سر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کی تھی اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف
یہ وائس آف امریکہ
This is VOA News, coming to you by remote. I'm Gene Randall. U.S. President Donald Trump has delivered his first commencement address at the U.S. Military Academy in West Point, New York, where 1,100 U.S. Army cadets are graduating. In his remarks, Mr. Trump talked about the rich diversity in the class of 2020, but he also emphasized the theme of unity, perhaps ironic, at a time when many past defense establishment leaders have harshly criticized him as someone who promotes divisions. Case in point, former Trump Defense Secretary Jim Mattis, who said the president has made no effort to unite the country. Trump has also gotten pushback from the current Pentagon chief, Mark Esper, who said he did not support the idea of using U.S. military troops to deal with racial justice protesters, something Mr. Trump had threatened to do. Another cloud, this week's admission from Military Joint Chiefs Chairman General Mark Milley, that he had made a mistake by appearing in a photo op with President Trump holding a Bible in front of a church. That was a short time after the street had been cleared of peaceful racial justice demonstrators. Milley said he had violated the principle of keeping the military out of politics. Donald Trump and defense officials are also at odds over the idea of renaming American bases, which honor the memory of Confederate military leaders. The Pentagon says it's open to the idea. The president says he won't even discuss it. The Confederacy was made up of southern states that left the Union in 1861. Then waged civil war against it until surrendering in 1865. The president says after talking to African-American friends, he has moved the date of a political rally in Tulsa, Oklahoma, from June 19th to the 20th, out of respect for a date that celebrates the end of slavery in the United States. Mr. Trump had faced heavy criticism both for the timing and location of his rally. Tulsa was the scene of white mob killings that cost scores of American black lives during 2 days of violence in 1921. Some historians put the death toll as high as 300. This is VOA News. President Trump's decision to do the West Point address today in person countered a New York limit of 150 people because of the pandemic in the country. Cadets prepared for the day with 2 weeks in quarantine, and parents and friends were barred from the ceremony. New York has lost almost 31,000 lives to COVID-19, with a case count of close to 381,000. New York has lost almost 31,000 lives, with a case count of close to 381,000. COVID-19 continues to take thousands of lives a day. Johns Hopkins University puts the case count worldwide at almost 7.7 million, with nearly 427,000 lives lost. India's had about 309,000 cases in the world, with new cases up by 11,000 in the past day alone. India's fatality count is just under 9,000. Quoting unnamed sources, Politico is reporting that U.S. Secretary of State Mike Pompeo plans a trip to Hawaii to meet with Chinese government officials. Pompeo is a strong China critic who has echoed President Trump's charge that China could have prevented the deaths of hundreds of thousands of people around the world by being more transparent about the coronavirus. Meanwhile, Beijing says it's locked down 11 residential neighborhoods to cope with a new outbreak of the disease. This after China said 45 people who live near a wholesale food market had tested positive for the virus. African leaders say China will ensure the supply of 30 million COVID testing kits and 10,000 ventilators a month to the African continent as the pandemic numbers there get worse. South Africa has well over a quarter of the continent's virus cases, with more than 61,000. The United States leads the world in COVID-19 numbers, more than 2 million cases and a death toll closing in on 115,000. There are new spikes in COVID figures reported in nearly 20 American states, including Texas, Arizona, Arkansas, and Alabama. But they are sticking with their back-to-work plans despite warning signs they risk the danger of expanding current outbreaks. Even with rising caseloads, eat-in restaurants in Texas are now being allowed to operate at 75% capacity. Arizona officials are warning people against being part of large crowds. President Trump takes his re-election campaign to Arizona 10 days from now in an arena that holds 6,500 people. British Prime Minister Boris Johnson is warning people in Black Lives Matter demonstrations this weekend against violence, saying anyone attacking public property in the UK will face the full force of the law. At last weekend's London protests, there were dozens of arrests, with close to 30 police officers injured. Several demonstrations were planned for today. This is the first day that police in New York will operate under new measures signed into law by Governor Andrew Cuomo. This comes in response to the death of George Floyd, the black man who was killed while in police custody in Minneapolis. More news online at voanews.com. There is also a mobile app for your convenience. Via remote, I'm Gene Randall, and this is VOA News.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کے خصوصی شو کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند ہیں اور طالب علم گھروں سے ہی آن لائن تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں اسکول کی سطح پر جاری آن لائن تعلیم کے بارے میں کہ یہ سلسلہ کس انداز میں جاری ہے اور مختلف سطح کے طلباء و طالبات، ان کے اساتذہ اور والدین اس آن لائن تعلیم کے دوران کن تجربات سے گزر رہے ہیں اور کس طرح یہ ممکن بنا رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے دوران تعلیم کا سلسلہ کسی نہ کسی طرح جاری رہ سکے. تو پروگرام شروع کرتے ہیں لاہور کے گرامر اسکول کے استاد سے جو اے لیول کے طالب علموں کو آن لائن پڑھا رہے ہیں. نام ہے ان کا شہباز احمد. السلام علیکم شہباز احمد صاحب.
وعلیکم السلام.
شہباز صاحب کچھ بتائیے کہ کیسا جا رہا ہے یہ تجربہ آن لائن پڑھانے کا. پہلے بھی آپ کا کوئی سلسلہ جاری تھا کہ یہ لاک ڈاؤن کے دوران ہی یہ سلسلہ شروع ہوا؟
نہیں، اس سے پہلے میں نے پڑھایا تھا کوئی اسٹوڈنٹ کو یو کے میں، تو اس لیے تھوڑا سا میرا ایکسپیرینس تھا اس کے بارے میں. اور اب چونکہ جب یہ یکدم شروع ہوا تو اس میں پھر آپریٹرز وغیرہ خرید لیا اور ان کو پڑھانا شروع کیا، تو کافی حد تک بہتر ہے کیونکہ اس سچویشن میں میرا خیال ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا، دس از دا بیسٹ سولوشن کہ ہم بچوں کو کانسیپٹ سے انٹروڈیوس کرواتے رہے اور ان کو ایجوکیشن کی طرف مائل کرتے رہے.
تو کون سے سافٹ ویئر، کون سا چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں پڑھانے کے لیے؟
تو زوم استعمال کر رہا ہوں، ٹیبلٹ میں وہ نیٹ لنکس ہے، اس کی اسکرین ہوتی ہے، اس پہ لکھ کے زیادہ تر بچوں سے انٹریکشن بھی رہتی ہے، ان کے مائک آن ہوتے ہیں، سم ٹائم وہ ویڈیو بھی آن کر لیتے ہیں، اگر کسی کو کوئی کوسچن پوچھنا ہے تو وہ اپنا ہینڈ ریز کرتا ہے اور پھر میں اس سے ویڈیو پہ لے کے تو اس سے ڈسکشن بھی ہو جاتی ہے.
تو روزانہ کلاسز ہوتی ہیں کہ ہفتے میں کتنی بار آپ کلاسز لے رہے ہیں؟
اکارڈنگ ٹو ٹائم ٹیبل کا جو ہمارے انسٹیٹیوشن میں ٹائم ٹیبل اسٹوڈنٹس کو دیا گیا، اس کے مطابق ہماری تین کلاسز منتھ میں ہوتی ہیں اور وہ کوئی 1 hour 20 minutes 10 minutes تک ہم ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں.
مسائل کیا پیش آتے ہیں خاص طور پر؟
مسائل اس میں جو ویک اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ذرا ان کا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ انٹریکٹ نہیں کرتے، وہ کوسچن نہیں پوچھتے، پھر ہمیں بھی کچھ ان زیادہ سچویشن کلیئر نہیں ہوتی کہ اس وقت وہ کنسنٹریشن سے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں. ظاہر ہے جو ایک کلاس روم کا ایٹماسفیئر ہوتا ہے تو اس میں تو ہم ہر اسٹوڈنٹ تک اپروچ کرتے ہیں اور ان سے بات کر کے ان کو موٹیویٹ کر لیتے ہیں، لیکن اس میں بھی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی موٹیویشنل پوائنٹ ان کو بتاتے رہتے ہیں تاکہ وہ ایک تو جو ڈپریشن پھیلا ہوا ہے، فرسٹریشن پھیلی ہوئی ہے، اس سے نکلیں اور اس کے بعد یہ کہ ان کو پھر اس طرف مائل کریں کہ یہ جو ٹائم ہے ان کو ملا اس میں وہ اپنی تعلیمی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز، ان کو جو پراپر طریقے سے کرتے رہیں سو دیٹ کہ ان کا تعلیمی حق نہ ہو.
تو اب آپ اوور آل کیا دیکھتے ہیں کہ اگر یہ سسٹم پرولونگ کرے گا تو اساتذہ کے لیے کیا مسائل ہوں گے اور اسٹوڈینٹس کے لیے کیا مسائل ہوں گے؟
اگر یہ سسٹم پرولونگ کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ آن لائن کلاسز ان کو چلاتے رہنا چاہیے سو دیٹ کہ بچوں کا ایجوکیشن لیئر جو ہے وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، بچوں کی لرننگ ہوتی رہے. باقی پرابلم صرف اتنی ہے کہ جو ایکسٹرنل ایگزام ہوتا ہے جیسے اے لیول کا کیمبرج یونیورسٹی ایگزام دیتی ہے تو وہ مسائل ضرور آ رہے ہیں، بٹ اس دفعہ تو انہوں نے چونکہ جو پریویس ایگزام ہم نے لیے تھے آن دی بیسس آف دیٹ ہم نے ان کا ریزلٹ بنا کے بھیج دیا، ان کے وہ پریڈکٹڈ گریڈ، تو اس کے بیسس پہ ان کا ریزلٹ بن جائے گا. لیکن اب جو نئی کلاسز آئیں گی چونکہ ان کی انٹریکشن ہمارے ساتھ اس طرح ون ٹو ون تو نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کہ آن لائن ہم ان کو گائیڈ لائن تو دیتے رہیں گے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ستمبر اکتوبر تک یہ سلسلہ ختم ہو جائے اور آن لائن کلاسز والا سلسلہ پھر منقطع ہو جائے گا. بٹ میں نے ایک چیز اس میں سیکھی ہے، یہ امپورٹنٹ لرننگ ہے کہ اگر ہم اس کو کنٹینیو بھی کرتے ہیں تو بعد میں بھی بچوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا رات کو یا کسی بھی لمحے جب بچوں کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو یہ کافی فائدہ دے سکتا ہے.
یعنی یہ ایلیمنٹ جاری رہے گا انٹریکشن کا, ون ٹو ون جو اس وقت ہو رہی ہے وہ آئندہ جب بھی اسکول کالج کھلیں گے تو اساتذہ کے لیے یہ آسانی رہے گی اور اسٹوڈینٹس کے لیے بھی.
مطلب ایک ایڈیشنل سلسلہ شروع ہو جائے گا ساتھ بچوں کی گائیڈ لائن کا, ان کو ہم گائیڈ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی بچہ فار آف ایریا میں ہے اور وہ پڑھنا چاہتا ہے, بڑے شہروں کی اسٹینڈرڈ ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتا ہے یا اچھے ٹیچر سے پڑھنا چاہتا ہے, تو آئی تھنک ان علاقوں کے لیے یہ بہت بڑی بلیسنگ ثابت ہوگا.
اور بہت سارے اسکول جو شہروں کے اسکول ہیں وہ دیہات کے بچوں کو ایجوکیشن دے سکیں گے, جیسا کہ کالجز ہیں جیسے کہ آن لائن ڈسٹینس لرننگ,
جیسے یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے ڈسٹینس لرننگ ہوتی ہے. یہ آپ ہمارے ادھر ڈمپ یونیورسٹی ہے, یہ یو کے کی یونیورسٹیوں امریکن یونیورسٹیوں کے لیکچرز بچوں کو ڈلیور کرتے ہیں اور اس طرح بچوں کو ایک ایکسپوئر مل جاتا ہے رہ کے اچھے ٹیچرز کا, تو یہ سچویشن کافی فائدہ مند ہو سکتی ہے.
تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اسکولوں میں آن لائن لرننگ کا, آن لائن ایجوکیشن کا کچھ نہ کچھ عمل دخل اب شروع ہو سکتا ہے یا ہو جانا چاہیے کرونا کے بعد بھی؟
جی, کرونا کے بعد بھی ہو جانا چاہیے, کیونکہ کافی حد تک لاہور میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے خاصے ٹیچرز جو ہیں وہ اچھے ٹرینڈ ہو گئے ہیں اور بڑا پراپر طریقے سے. میرا اپنا بیٹا اے لیول میں پڑھ رہا ہے اور جو اس کو فزکس, میتھمیٹکس اور بایولوجی کے ٹیچرز ہیں اور کیمسٹری کے, وہ ان کو بڑی پراپر گائیڈ لائن مل رہی ہے. میں اس کو مانیٹر کرتا رہتا ہوں اور وہ اس میں پروگرس ہو رہی ہے اور بڑا سیریسلی وہ کلاسز اٹینڈ کر رہا ہے.
بہت شکریہ شہباز احمد صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے وقت نکالا. آپ کیمسٹری کے استاد ہیں گرامر اسکول لاہور میں, طالبات کو بھی پڑھا رہے ہیں اور طلبا کو بھی پڑھا رہے ہیں اے لیول کے اسٹوڈینٹس کو. آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل, آپ سن رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام. اس پروگرام میں اب ہم آپ کو معلومات فراہم کریں گے کہ پاکستان میں جو اسکول کے بچے ہیں وہ اس وقت کس طرح آن لائن ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے, اور اگر کر رہے ہیں تو انہیں کیا کیا مسائل درپیش ہیں. اس بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد حسین جو سائنس کے ٹیچر ہیں, ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں ملتان سے, اور یہ ایک اسکول مختلف اسکولوں میں یہ پڑھاتے ہیں اور آن لائن بھی کچھ ایجوکیشن دے رہے ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت کیا حالات ہیں پاکستان میں اسکول کی ایجوکیشن کے کرونا لاک ڈاؤن کے دوران. السلام علیکم امجد حسین صاحب.
وعلیکم السلام.
امجد صاحب کچھ بتائیے اپنے بارے میں کہ آپ آج کل کیا پڑھا رہے ہیں, کن اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں, کس طرح پڑھا رہے ہیں؟
میں وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ ایل جی ایس بلوم فیلڈ اور جناح اس میں پڑھاتا ہوں, اور ہماری کچھ کلاسز ہم او لیولز اور اے لیولز کو پڑھاتے ہیں, تو زوم پہ یا گوگل کلاس روم کو یوز کرتے ہوئے ہم آج کل ٹیچنگ کر رہے ہیں. جو پرابلمز ہیں ہمیں وہ تھوڑی سی نیٹ کنیکشنز یا بینڈ وڈتھ کے وجہ سے ہیں, اسپیشلی ایوننگ آفٹرنون ٹائم میں جو لوڈ نیٹ پہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے کچھ پرابلمز آتی ہیں, اس لیے ہمیں اپنی کلاسز مارننگ میں پلان کرنی پڑتی ہیں. جو اسٹوڈینٹس ہیں اس کے لیے بھی سیم یہی پرابلمز ہیں کہ ان کے بھی نیٹ ڈسکنیکشنز ہوتے ہیں, اور ٹیچرز کے لیے بھی یہ سیم پرابلم ہے. لیکن یہ جو ہائر کلاسز ہیں 9th, 10th grade یا 12th grade یا جو گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ ہیں, ان کی کلاسز موسٹلی زوم پہ لائیو یا گوگل کلاس روم کو یوز کرتے ہوئے ہو رہی ہیں.
تو یہ بتائیے امجد حسین صاحب کہ یہ اسٹوڈینٹس بھی نہ تو پہلے سے تیار تھے, نہ ان کی کوئی ٹریننگ تھی کہ کس طرح آن لائن پڑھا جا سکتا ہے, نہ ہی ٹیچرز ٹریننگ تھی اس بارے میں, تو کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کامیاب طریقہ ہے اس وقت ایجوکیشن دینے کا؟
हम इसको 100% कामयाब तो नहीं कह सकते, बिकॉज जो आपने कहा ट्रेनिंग नहीं थी, तो वो ट्रेनिंग वाकई नहीं थी, और उसके लिए बहुत सारे इवन के जो अरेंजमेंट्स हैं, जो सेटअप्स हैं, वो भी ऐसे नहीं थे। जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए रिक्वायर्ड सेटअप है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं था, और लॉकडाउन की वजह से कोई नई परचेज और नई अरेंजमेंट पॉसिबल भी नहीं थी, तो इसलिए स्टार्ट में बहुत डिफिकल्टी हुई। अब जो लॉकडाउन थोड़ा सा ईज आउट हुआ है, तो उसकी वजह से अब कुछ अरेंजमेंट्स हमारे पास और जनरली मतलब सब लोगों के पास कुछ इम्प्रूव हो चुके हैं, और जो इन्फॉर्मेशन है वो भी बहुत सारी नेट से ली गई कि कैसे बेटर किया जा सकता है। जो टूल्स हैं वो भी हमने कुछ लर्न किए पिछले 1-2 मंथ्स में, तो अब इट्स गोइंग बेटर। अदरवाइज मार्च अप्रैल तक ये वाली कोई इतनी सक्सेसफुल सिचुएशन नहीं थी।
और दूसरे है कि क्या सभी बच्चों के पास लैपटॉप्स मौजूद हैं घर में, किस तरह क्या मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा मोड इस्तेमाल होता है उनको सिखाने के लिए?
कुछ जो एलीट क्लास स्कूल्स हैं या अपर क्लास स्कूल्स हैं, मैं भी जिनमें से 2-3 में पढ़ाता हूँ, वहां पे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एक एक घर में एक से ज्यादा लैपटॉप्स या जो आईपैड या और डिफरेंट जो टूल्स हैं वो अवेलेबल हैं, फोन भी मतलब लार्ज स्क्रीन फोन्स भी हैं जिसको यूज करते हैं कुछ बच्चे। लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या जो थोड़े से लो क्लास पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें ये ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनके पास नेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी या इस स्पीड की अवेलेबल नहीं थी नेट फैसिलिटी के, जो ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड किया जा सके। उनमें फिर ज्यादातर स्कूल्स ने ऑप्ट भी ये किया था कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ताकि वो जो नेट की स्पीड है वो इंटरफेयर ना करे, तो वो उस तरह की सिचुएशन भी रही कि रिकॉर्डेड लेक्चर या जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उनकी तरफ से जो टीवी चैनल एक डेली स्कूल के नाम से चलाया गया, जिसमें कोई 8-10 आवर्स क्लासेस ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स वहां पे वो होती हैं एक टाइम टेबल के हिसाब से, तो उसने भी काफी हेल्प किया। वो टेली स्कूल ज्यादा हेल्पफुल इसलिए रहा कि वो एक टीवी चैनल है, और टीवी चैनल तक जो रसाई है या एक्सेस है वो ज्यादा इजी है, ज्यादा पब्लिक के लिए है, तो वहां पे नेट फैसिलिटी या कोई कंप्यूटर लैपटॉप होना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो टीवी पे ही आ जाता है और वो टाइम टेबल के हिसाब से चलता है। तो और सारी क्लासेस के लेक्चर्स वहां पे क्लास 1-2 से लेके और 12th ग्रेड तक वहां पे लेक्चर्स होते हैं।
लेकिन वही बात कि अगर एक दफा उन्होंने लेक्चर देख भी लिए तो क्या उसकी क्या उसका मयार क्या है, वो इंटरेक्शन नहीं हो रही, वो याद कैसे करेगा, उसके पास उसके कोई सबूत है, डाउनलोड कर सकता है
ये? वो एक वेबसाइट अवेलेबल है sabak.com से, जहाँ पे वो लेक्चर बाद में भी लिए जा सकते हैं, मतलब अगर आपने वो लेसन उस चैनल पे उस टाइम मिस कर दिया। लेकिन जो इंटरेक्शन वाला प्रॉब्लम है वो सब जगह फेस करना पड़ रहा है, वो हमें जो हम जूम पे पढ़ा रहे हैं उसमें भी और जो टेली स्कूल है उसको भी वो फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि जो इंटरेक्शन है और जो स्टूडेंट्स के साथ स्टूडेंट्स को जो इंक्वायरी उनसे करना और जो जो लर्न उन्होंने कर लिया उससे वो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अभी तक हमारे पास ऐसी अरेंजमेंट नहीं है कि हम स्टूडेंट्स को फॉलो कर सके, जो फॉलो अप है वो ज्यादा डिफिकल्ट।
तो क्या अगर ये सिस्टम अगर ये प्रोलॉन्ग करता है लॉकडाउन, तो फिर क्या उनके इम्तहान का क्या बनेगा, उनके टेस्ट का क्या बनेगा, किस तरह आप जज करेंगे, किस तरह उनको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे?
अभी जो क्लास 8-9 तक तो उन्होंने जो प्रमोशन है वो प्रीवियस रिकॉर्ड की बेस पे ज्यादातर जगह पे अप्लाई हो रहा है, और कुछ स्कूल्स के जो एग्जाम्स हैं वो डिले हो चुके हैं। अब देखें अगर ये सिचुएशन COVID-19 की कुछ इम्प्रूव करती है तो उसके बाद वो एग्जाम्स होंगे, अभी तक उनके बारे में कोई फाइनल नहीं।
बेहद शुक्रिया अमजद हुसैन साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
वॉशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील और आप सुन रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में अब हम गुफ्तगू करते हैं शकील अहमद से, जो मुल्तान के जिना हाइज में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के उस्ताद हैं और तैयारी में हैं कि अपने स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन कुछ पढ़ा सके अपना सब्जेक्ट। तो इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त इनके स्टूडेंट्स की। अस्सलाम वालेकुम शकील अहमद साहब।
وعلیکم السلام.
شکیل صاحب کچھ بتائیے کہ ملتان میں خاص طور پر جو بچے ہیں اسکول کے ان کی تعلیم کیسے جا رہی ہے اور کیا مسائل ہیں ان کو بچوں کو اور کیا مسائل ہیں ٹیچرز کو؟
جی جی یاسمین, جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ہمیشہ سے بچوں کے لیے, پیرنٹس کے لیے اور ٹیچرز کے لیے ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو اس کا ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ خاص طور پہ اس پینڈیمک کے آؤٹ بریک میں جب لاک ڈاؤن ہے تو بچے اسکول نہیں آ پا رہے اور اسکول والے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو آن لائن ڈفرینٹ میتھڈ سے نا ایجوکیٹ کریں, لیکن جو اس کا ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ بچے جو ہے وہ فزیکل انٹریکشن نہیں کر پا رہے اپنے پیئرز کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, وہ گھل مل کے جیسے گیمز کھیلتے ہیں. اور یہ مینٹل ایک ریسپائٹ جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ایجوکیشن کا یہ بھی پارٹ ہوتا ہے کہ کریکولر اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں, اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہی بچے کریکولر ایکٹیویٹیز میں انوالو اپنے آپ کو یا اس کو انڈرسٹینڈ کر پاتے ہیں. تو ٹیچرز تو اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں, کوئی زوم یوز کر رہا ہے, کوئی مائکروسافٹ ٹیم ورک یوز کر رہا ہے, کوئی واٹس ایپ یوز کر رہا ہے, لیکن میری فیلنگ یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کوآپریٹو یا گروپ لرننگ, تو اس کا وہ ایک انوائرمنٹ نہیں آن لائن ٹیچنگ میں سیٹ ہو پا رہا. تو امید ہے کہ جو ہے جیسے جیسے یہ لوگ اور اس میں لرن کریں گے, کیونکہ یہ سارے ٹیچرز کے لیے خاص طور پہ پاکستان کے اور بھوٹان کے اس پارٹ کے لیے بھی ایک نیا ایکسپیرینس ہے کہ آپ کو کیسے آن لائن میکسیمم امپارٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ اتنی ٹیکنالوجی ڈیولپ تو نہیں ہے. تو بہرحال پھر بھی اپنی سی کوشش جاری ہے.
تو کیا آپ فیوچر کیا دیکھتے ہیں آن لائن ایجوکیشن کا؟
اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اپرچونٹی کے طور پہ بھی ہمیں اس کو لینا چاہیے, اور اس نے ہمیں ایک نیا موڈ آف ایجوکیشن جس کو جو پہلے سے ایگزسٹ کرتا تھا لیکن اتنا پریفریبل نہیں تھا, تو اب اس میں بھی ہمیں نا اس کی امپورٹینس جو ہے وہ ریئلائز کرا رہا ہے کہ ہمیں اس کو بھی آپٹ کرنا چاہیے, کیونکہ جو فیوچر چیلنجز ہیں ان چیلنجز میں ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں. تو یہ والی ایک جو چیز ہے یہ بھی بہت امپورٹینٹ ہے, اس سے ٹیچر بھی اپنے آپ کو ایکسپرٹ کریں گے, بچے بھی یوز ٹو ہو جائیں گے. تو میرا خیال میں کہ فیوچر میں اس کی اگر پینڈیمک نہیں بھی ہوگی تو پھر بھی بچے اس سے استفادہ کریں.
بہت شکریہ, بہت شکریہ شکیل احمد صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. جناح ہائز میں اسکول ملتان میں آپ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے استاد ہیں اور آن لائن بچوں کو پڑھانے کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل, آپ سن رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام. اور اب ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک دو بچوں کی والدہ ہیں, لاہور سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر ہیں. ان کے بچے بھی آن لائن اس وقت پڑھ رہے ہیں, تو ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو والدہ ہیں اپنے بچوں کو کس طرح آن لائن پڑھانے میں مدد کر رہی ہیں. نام ہے ان کا سارا عامر, تو بات کرتے ہیں. السلام علیکم سارا عامر صاحبہ.
وعلیکم السلام.
سارا کچھ بتائیے کہ آپ کے بچے کن کن عمروں کے ہیں اور کہاں پڑھتے ہیں اور کن کن کلاسز میں ہیں؟
جو میرا ایلڈر بیٹا ہے he is in grade 4 and he is 10 years old. Aur jo younger son hai, he is only 3 years old. To ab iska coming year tha in for playgroup, wo bhi is situation mein nahi wo cheez ho chuki.
theek hai, तो ये वो किस स्कूल में पढ़ता था और उनके स्कूल वालों ने क्या ऑनलाइन एजुकेशन किस तरह शुरू की और किस तरह आपने बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाने में मदद कर रहे हैं पढ़ने में?
जो बेटा मेरा है वो पढ़ता है LGS लाहौर ग्रामर स्कूल लाहौर में, और इस तरह है कि उन्होंने पहले जैसे इश्यूज क्रिएट हुए तो शुरू में उन्होंने कुछ हम लोगों को ऐसे कहा कि आप प्लीज आइए और कलेक्ट कर लीजिए कोई पेपर वर्क में, तो जो आप उनको A4 शीट्स पे आप वो डन करवा सके काम। चलें ठीक है, हमने वो चीज इस तरह से कर ली ठीक है, लेकिन अब ऑनलाइन क्लासेस का जो उन्होंने किया है वो थोड़ा सा ऐसा था कि कुछ चीजें बच्चे अटेंड नहीं कर पाते तो वो बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी कि आपको पेरेंट को बैठना पड़ रहा है बच्चों को, और एक ये होता है कि एक रूटीन होती है स्कूल गोइंग बच्चों की, दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वो चीज बिल्कुल भी इस तरह से नहीं है कि बच्चों की क्लासेस हो रही है कोई 2 o'clock हो रही है इन द आफ्टरनून, तो वो एक रूटीन बड़ी डिस्टर्ब हो गई है। जो अर्ली स्कूल गोइंग बच्चों की होती है वो चीज बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो एक मैं ये समझती हूँ कि उनकी एक लाइफ में जो बड़ी अच्छी चीज थी एक डिसिप्लिन था, वो चीज सबसे पहले तो वो मेंटेन नहीं हो पा रहा क्योंकि बच्चे हम लोगों की बात में नहीं उस तरह से फॉलो करते, तो ये मुझे एक चीज ये भी है। और दूसरा वो बड़े कंसंट्रेशन का लैक होता है उस टाइम क्योंकि बच्चे बिल्कुल उसको अटेंटिवली नहीं कर ले रहे होते, और एक क्लास चल रही है तो उसमें कोई टीचर कोई उनके साथ कोई फन नहीं कर सकती, कोई कुछ कुछ भी ऐसा नहीं होता जो एक्स्ट्रा करिकुलर हम एक लेसन के अंदर बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कर सकते हैं, तो वो सब चीजें नहीं होती क्योंकि एक टीचर एक साइड पे होते हैं, एवरीबडी इज लिसनिंग टू हर, और इस तरह से वो ले रहे होते हैं क्लास की तरह, तो वो चीजें बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बच्चे बहुत बोर हो जाते हैं, वो उस तरह से उसको इंटरेस्ट से नहीं कैरी करते, इवन के वो ज्यादातर अपने वो माइक्स को और हेडफोन्स को सेटल करने में लगे रहते हैं, तो वो चीज इतनी देर में वो लेक्चर भी प्रोसीड कर जाता है, और फिर पेरेंट्स को उनको बहुत मुश्किल से टैकल करना पड़ता है उनको अप टू द मार्क लाने के लिए। मैं ये समझती हूँ टीचर तो एक टेप की तरह बता के चले जाते हैं लेकिन पेरेंट्स को उनको लेके चलना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, तो वो हमें बहुत बर्डनाइज हो चुके हैं हम इस सबसे।
आपके आपका बेटा इस वक्त अगर आपके पास है तो उससे बात कराइए, हम उससे पूछते हैं कि वो किस तरह ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है आज।
प्लीज बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या नाम है आपका?
माय नेम इज अली हुसैन एंड माय क्लास इज फॉर रेड।
वाह वाह, बड़े बड़े तेज बच्चे लग रहे हैं आप तो भाई, इसलिए कि अब आप आजकल कंप्यूटर पर पढ़ रहे हैं। ठीक, तो बताइए कंप्यूटर पर कैसे पढ़ रहे हैं अली हुसैन?
लिंक भेजते हैं,
अच्छा
फिर ऑनलाइन क्लास होती है।
अच्छा फिर
बहुत इंटरेस्टिंग रिवाइज करवाती हैं टीचर, टेस्ट भी ले लेती हैं, क्विज होते हैं मेरे, मैं अच्छा ही करता हूँ मतलब फर्स्ट
फर्स्ट के करीब यानी सेकंड थर्ड तक आप आ जाते हैं तो। लेकिन स्कूल में जाकर पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता था कि कंप्यूटर पर पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है ऑनलाइन?
स्कूल में ज्यादा मजा आता है।
क्यों, अब तो ज्यादा मजे मजे नहीं, सारा दिन घर में रहते हैं अम्मी के साथ, खाते हैं पीते।
बहुत सारे बच्चे होते हैं उनके साथ हम खेलते हैं।
हाँ, तो मुश्किल क्या होती है जब आप पढ़ते हैं, तो सबसे मुश्किल आपको क्या लगता है, किस तरह आपको, अब अम्मी हर वक्त आपके साथ रहती है कि आपको खुद भी आ गया ऑनलाइन पढ़ना?
मेरी मम्मा हेल्प करती हैं मतलब
क्या?
सब्जेक्ट्स में हेल्प करती हैं, अगर ना कुछ समझ आ रहा तो फिर वो हेल्प कर देती हैं।
बेहद शुक्रिया अली हुसैन, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील, आप सुन रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम, और अब हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक वालिदा से जो अपने छोटे छोटे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रही हैं। नाम है इनका जवेरिया उबैद। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया उबैद।
जी वालेकुम अस्सलाम।
इस्लामाबाद से हैं आप या पिंडी से हैं हमारे साथ?
जी, इस्लाम आबाद से मैं आपके साथ हूँ।
तो कुछ बताइए जवेरिया कि आपके कितने बच्चे हैं और उन बच्चों को आजकल घर में आप वैसे तो बतौर वालदा भी कंट्रोल कर रही होंगी लेकिन उनको पढ़ा भी रही हैं, तो ऑनलाइन पढ़ाने में आपको क्या मुश्किल पेश आ रही है और उन बच्चों को क्या मुश्किल पेश आ रही है?
आजकल मैं उन्हें घर पर ही पढ़ा रही हूँ, खुद पढ़ा रही हूँ। ऑनलाइन क्लासेस जो है वो उनको जो सिलेबस दिया जा रहा है बच्चों को, क्योंकि बच्चे मेरे बहुत छोटे हैं तीनों ना, जो मेरा सबसे बड़ा, मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं, और जो सबसे बड़ा बेटा है वो 1 क्लास में है और वो 7 इयर्स का है, और जो दूसरा बेटा है वो 5 इयर्स का है और वो है केजी में, और जो उससे छोटा है वो उसने अभी स्टार्ट लिया है, वो पीजी में है।
ठीक, तो किस किस
जी
सबको आप पढ़ाती हैं या सबकी तालीम जो है ऑनलाइन है इस वक्त?
जी सबकी ऑनलाइन है, तो अभी सिर्फ ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम होता है कि वो एक जगह पर फोकस होकर नहीं बैठ सकते लैपटॉप पर, कि वो बैठते नहीं है एक टाइम में फोकस होकर। वैसे तो घर में तो मैं उन्हें आराम से पढ़ा लेती हूँ, कोई इशू नहीं होता। जो स्कूल से उनकी जो उनका सिलेबस है वो वीकली मंथली वो हमें दे दिया जाता है, तो उसको हमने कवर अप करना होता है एक टाइम पीरियड में। उसके अलावा इनके स्कूल में ये है कि अब छोटे छोटे से वीडियोस बना के हर चैप्टर की, हर टॉपिक्स की, वो बच्चे देखते हैं, उससे भी बच्चे काफी कुछ सीख रहे हैं।
पढ़ा आपने, आप खुद कितना?
मैंने एमसीएस किया हुआ है।
तो आप तो हैं ही कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट,
जी,
तो
तो
फिर
शायद इसी वजह से मुझे कोई इतना ज्यादा इश्यू नहीं आ रहा है बच्चों को पढ़ाने में, बच्चे भी आराम से पढ़ लेते हैं। सिर्फ एक प्रॉब्लम होता है कि जो छोटा, सबसे छोटा मेरा बेटा है ना, वो जरा फोकस नहीं कर सकता ऑनलाइन बैठ कर, तो वो मैं उसको अलग से फिर बैठ कर उसे पढ़ा देती हूँ।
तो असातिज़ा जो है आप क्या समझती हैं उनका इस वक्त क्या रोल है, क्या वो सही तरीके से हैंडल कर रहे हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर आप लोग इस्तेमाल करते हैं, कैसे ऑनलाइन जाते हैं बच्चे?
जी व्हाट्सएप पर भी उनकी वीडियोस बहुत ज्यादा अपलोड होती हैं और वो वीडियो कॉल करते हैं, इंस्टाग्राम से भी उनके छोटे छोटे स्नैप शॉर्ट्स होती हैं, डिफरेंट दोनों मेथड जो है, सोर्स जो है वो यूज किए जा रहे हैं इनके स्कूल में ना। और मैं तो इनके स्कूल से बहुत सेटिस्फाई हूँ, बड़ा अच्छा गाइड करती हैं आपको, प्रॉपर हर वीकली आपको रिस्पॉन्ड भी दिया जाता है, और इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है ना वो भी ये मैसेजेस हमें सेंड कर देते हैं कि अब आपने बच्चों को, जैसे रमजान मुबारक था और ईद थी और कोरोना वायरस से रिलेटेड था, कि आपके बच्चे इस वक्त क्या सोच रहे हैं, पैगाम मैसेजेस कैसे दें आप दूसरों को, तो उस तरह के शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस भी हम बच्चों की बनाकर स्कूल सेंड कर रहे थे और वो फिर अपलोड कर रही थी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, कि इससे बच्चे भी इंगेज रह जाते हैं और उनकी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो है वो भी हो रही है साथ साथ।
तो आपके इसका मतलब कि आपके जो बच्चे हैं वो इस वक्त कोई ज्यादा परेशान नहीं है स्कूल ना जाने से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि स्कूल जाएं, तो आपके बच्चे खुश हैं?
नहीं, ये घर में खुश तो है, लेकिन एक जो एक एनवायरनमेंट और माहौल जो एक स्कूल में बच्चा सीखता है वो चीज हम घर में तो अभी बच्चों को नहीं प्रोवाइड कर सकते ना। अब जो इस तरह से जो अब हमारा एनवायरनमेंट जैसा हो गया है, तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना है। बच्चे जिस तरह से, अब हम बच्चों का टाइम भी वेस्ट ना हो तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैं भी, इनका स्कूल भी, कि बच्चों का जो है वो टाइम वेस्ट ना हो, बच्चे जो है वो अच्छा पढ़ सके, जो उनका पढ़ाई का खर्च हो रहा है, जो वेस्ट हो रहा है टाइम, उसको हम थोड़ा सा कवर अप कर सकें। लेकिन जो स्कूल में बच्चा जाकर खुद सीखता है अपनी टीचर से, अपने, वैसे मैं बच्चों को उस तरह से नहीं पढ़ा सकती जिस तरह उनके स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन पूरी कोशिश होती है कि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं सॉल्व कर दूं।
तो आप ये समझती हैं कि आपके बच्चे सब मेंटली भी कोई फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं हो रहे इतने दिन तक घर में रहकर, या कोई और परेशानी उन्हें नहीं?
लिटिल बिट है, थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है कि हम उन्हें कह सकें नहीं, क्योंकि वो इस चीज को समझते हैं कि बाहर जो है वो एक सिचुएशन ऐसी हो गई है। मेरा बड़ा बेटा जो है ना, माशाल्लाह, वो इस सिचुएशन को समझता है, उसे पता है कि जो है बाहर हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो हमने अपने आप को सिक्योर रखना है हम
अच्छा,
सबने।
ठीक है, बेहद शुक्रिया जवेरिया उबैद, आपने बड़ी तफसील से बताया कि इस वक्त आपके बच्चे किस तरह ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन जाहिर है कि माओ की हिदायत और माओ की गाइडेंस के बगैर वो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते।
जी, बिल्कुल,
बेहद शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए
थैंक
वक्त
यू।
निकाला।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील। आप सुन रहे हैं हमारा खसूसी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं उन तालिब इल्मों से जो इस वक्त ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, और उन वालिदैन से जिनके बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, और उन असातिज़ा से जिनके स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और जिन्हें वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक तालिबा इस्लामाबाद से मौजूद हैं, हमना नाज उनका नाम है, तो उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमना नाज।
वालेकुम अस्सलाम।
हमना, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, कौन से स्कूल में पढ़ती हैं इस्लामाबाद में?
मैं 8वीं जमात में पढ़ती हूँ नेपाल के इंटरनेशनल अमेरिकन स्कूल में।
तो नेपाल के स्कूल में पढ़ती हैं, लेकिन इस वक्त आप क्योंकि पाकिस्तान में हैं तो आपकी एजुकेशन अभी जारी है और आप ऑनलाइन अपने नेपाल वाले स्कूल के लिए पढ़ रही हैं, ठीक?
जी।
अच्छा, तो कैसे पढ़ती हैं, क्या आपको पहले से आता था ऑनलाइन पढ़ना, क्या आपने यहाँ सीखा या आपके असातिज़ा ने आपको सिखाया?
मैंने पहले कभी भी ऑनलाइन स्कूलिंग नहीं की, मगर हम लोगों के स्कूल वालों ने हमारे लिए मीटिंग्स अरेंज की हुई थी जिनमें वो हमें बताते थे कि हम क्या करें, किस तरह ऑनलाइन स्कूल कंटिन्यू करें, और कुछ रूल्स और तरीके कि हम कैसे उसे मेंटेन करें।
अच्छा, तो फिर आपने वो सीख लिए?
मैं ऑनलाइन पढ़ती हूँ अपने गूगल क्लासरूम की मदद से, जिसमें मेरी टीचर्स मेरी असाइनमेंट्स क्रिएट करती हैं और वहां से हम लोगों को वो असाइनमेंट्स कंप्लीट करके सबमिट करनी होती हैं।
तो आप डेली का डेली सबमिट करती हैं, कितनी क्लासेस लेती हैं एक दिन में?
हम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस मतलब के जो फेस टू फेस मीटिंग्स होती हैं वो हफ्ते में 2 दफा होती हैं, मगर जो डेली वर्क है वो हर रोज टीचर देते हैं जो एक हफ्ते बाद ड्यू होता है और उसे आप टाइम लिमिट में कंप्लीट करना होता है आपको।
तो क्या फर्क लगता है जब आप खुद पढ़ती हैं और वहां तो टीचर्स आपको पढ़ाते थे, तो कैसे मुश्किल तो नहीं पेश आती?
ऑनलाइन स्कूल में ज्यादा मसला है क्योंकि प्रेशर और बर्डन ज्यादा है पढ़ाई का, क्योंकि आप जब स्कूल जाते हैं आपके पास अपने फ्रेंड्स होते हैं, कोई बात करने को होता है, वो आपकी हेल्प भी कर देते हैं, वो समझते भी हैं, आप उनके साथ मिलके भी काम कर सकते हैं, टीचर से भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा मसला है क्योंकि ऐसा लगता है कि हम अकेले पढ़ रहे हैं और जब हेल्प चाहिए होती है तो किसी पेरेंट से पूछना पड़ता है या अपने टीचर को ईमेल करनी पड़ती है, तो उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है।
तो काम, जो भी काम होता है उसमें वक्त ज्यादा लगता है, तो आप ज्यादा घंटे पढ़ते हैं?
काम कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लग जाता है नॉर्मल टाइम से।
ठीक, तो और क्या इंटरनेट का प्रॉब्लम तो नहीं है आपके यहाँ इस्लामाबाद में?
इंटरनेट का भी एक प्रॉब्लम है कभी कभार, जब हमारी गूगल मीट्स पे क्लास होती है, जब पूरी क्लास फेस टू फेस बात करती है वीडियो कॉल पे, तो तब इंटरनेट का अगर मसला होता है तो बात कभी टीचर की समझ नहीं आती, कट जाती है कॉल, तो उसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है। फिर बाद में किसी से पूछना पड़ता है कि टीचर क्या कह रहे थे, क्या हुआ था, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाता है इंटरनेट की वजह से।
तो और क्या मसाइल पेश आते हैं?
बस मसाइल यही है, अपने अपने क्लास फेलो से बात कम होती है या उनकी हम हेल्प कम कर देते हैं, मतलब जिस तरह हम पहले एंगेजमेंट करते थे अपने फ्रेंड्स अपने क्लास टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ, वो अब नहीं है क्योंकि हम बहुत मुख्तलिफ जगहों पे रह रहे हैं, बस स्कूल के लिए बात होती है और कभी असाइनमेंट्स के लिए हेल्प चाहिए होती है तो हेल्प भी बहुत मुश्किल से होती है क्योंकि वो फिर सारा टेक्स्ट करके भेजना पड़ता है ना।
तो आपके और बहन भाई भी इसी तरह पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, तो घर में फिर शोर ज्यादा होता है तो प्रॉब्लम तो नहीं पेश आता कि पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं हो सकती?
जी, डिस्ट्रैक्शन बहुत है, जैसे अब जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं वो तो शोर मचाते हैं, फिर पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे हर किसी की डिफरेंट टाइम जोन है ना। अब जब टीचर असाइनमेंट पोस्ट करती है उस वक्त तो हमारी रात होती है, फिर हम लोग अपने दिन में काम करते हैं और कभी कभी डिस्ट्रैक्शन होती हैं, कोई पेरेंट्स का कोई बुला रहे होते हैं कभी नीचे, कभी खाने के लिए बुला रहे होते हैं, कभी कोई काम के लिए बुला रहे होते हैं, तो अपने लिए टाइम निकालना काम करने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
बेहद शुक्रिया हमना नाज, इस्लामाबाद से आप हमारे साथ टेलीफोन पर थी और आप नेपाल के एक स्कूल में, अमेरिकन स्कूल में आप पढ़ती हैं और इस वक्त पाकिस्तान आई हुई हैं, और लेकिन आपकी जो एजुकेशन है वो कंटिन्यू है नेपाल के स्कूल में। तो आप इस्लामाबाद में बैठकर नेपाल के अपने अमेरिकन स्कूल के लिए ऑनलाइन पढ़ रही हैं, और बेहद शुक्रिया आपने हमना नाज हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील और आप सुन रहे हैं हमारा खसूसी प्रोग्राम। और अब हम आपको लिए चलते हैं कनाडा, जहाँ एक स्टूडेंट है छोटी सी, वो भी ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रही हैं। तो उनसे पूछते हैं कि उनका क्या मसला उनको पेश आता है जब वो ऑनलाइन पढ़ रही हैं। तो नाम है इनका सिला। सिला, आप कौन सी क्लास में
हैं? ग्रेड फाइव में हूँ।
तो कुछ बताएं कि ये आप ऑनलाइन जो पढ़ रही हैं तो कैसे पढ़ रही हैं?
मैं अपने बाबा की हेल्प से कर रही हूँ।
अच्छा अच्छा, तो कैसे पढ़ती हैं आप? लैपटॉप पर कोई, कौन सा क्लास होती है? जूम से पढ़ती हैं, किससे पढ़ती हैं आप?
खुद पढ़ती हूँ। असाइनमेंट आती हैं, वो लिखना होता है उसमें। असाइनमेंट टीचर पोस्ट करती हैं मेरे गूगल क्लासरूम में, और वहाँ से मैं करती हूँ।
तो सबसे मुश्किल रोजाना आती हैं असाइनमेंट्स?
रोजाना नहीं आती, वो वन टाइम आती है मंडे, और वो सेवन आती है और एट आती है। असाइनमेंट आती है और वो बहुत हार्ड होती है।
तो फिर उन्हें वापस कब करके देना होता है?
संडे तक टाइम है।
अच्छा, तो फिर आप कितने घंटे में असाइनमेंट्स कर लेती हैं? 7 दिन की करती हैं फिर आप असाइनमेंट्स?
हर रोज करती हूँ मैं एक एक, क्योंकि 7 होती है, तो अगर 8 होती है तो डे में जो लास्ट डे होता है उसमें मैं 2 कर लेती हूँ।
तो क्या होती है असाइनमेंट्स आमतौर पर?
फ्रेंच, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, रीड वर्क्स, और लाइब्रेरी भी आ जाता है, और कुछ एप्स होती हैं जो फ्रेंच में देते हैं और मैथ में भी देते हैं।
अच्छा, तो आपको कंप्यूटर पर लिखना आ जाता है करना सारा काम?
आ तो जाता है।
अच्छा, तो लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल क्या लगती है आपको?
वो टीचर मुझे आंसर नहीं देती है क्वेश्चन का जो पूछती हूँ।
किस वक्त आंसर नहीं देती वो?
अगर मैं मंडे को कुछ पूछती हूँ टीचर को, तो वो असाइनमेंट करने के बाद जब मैं सबमिट कर देती हूँ अपना वर्क, तो जब आती है क्वेश्चन। अभी तक मैंने किया तो था, उनको दिया था, मैसेज अभी नहीं आया।
तो वैसे कैसा लगता है घर में पढ़ना?
अच्छा तो लगता है, लेकिन मुझे स्कूल वर्क चाहिए होता है, क्लास में जाना होता है, क्योंकि वहाँ पर टीचर होती हैं तो वो समझाती भी हैं, और मैं अपने क्लासमेट से हेल्प भी ले सकती हूँ अपने काम के लिए।
तो ये, और इतने दिन से आप घर में हैं, तो अब दिल चाहता है कि स्कूल जाएं आप?
3 मंथ से हूँ, और जब मैं हॉलीडेज आती है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि घर में बैठना। मुझे स्कूल बहुत पसंद है जाना, क्योंकि स्कूल में टीचर की एक्टिविटीज होती हैं, वो क्रिएटिव से कर बताती हैं, और वो इजीली हो जाता है फिर वहाँ काम, क्योंकि वहाँ पर हेल्प मिलती है बहुत ज्यादा।
घर में कोई हेल्प नहीं मिलती ना?
घर में नहीं।
तो फिर आप क्या कहेंगे अगर मैं कहूँ कि भाई ऑनलाइन पढ़ना अच्छा है कि स्कूल में पढ़ना अच्छा है, तो आप क्या कहेंगी?
मुझे स्कूल पे पढ़ना अच्छा लगता है।
ठीक है, तो बहुत शुक्रिया सिला, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू,
वेलकम।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील, आप सुन रहे हैं हमारा खसूसी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में, जैसा कि आपको अब तक मालूम हो चुका होगा, हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस बारे में कि पाकिस्तान और दुनिया भर के स्कूलों में कोविड-19 के इस दौर में जबकि स्कूल्स बंद हैं और सारी एजुकेशन ऑनलाइन सिमट कर आ गई है, स्कूलों में क्या मसाइल पेश आ रहे हैं असातिज़ा को, क्या मसाइल पेश आ रहे हैं स्टूडेंट्स को, और क्या मसाइल पेश आ रहे हैं वालिदैन को जो अपने बच्चों को घरों में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए तैयार करते हैं और उनकी मदद करते हैं और वो मदद करते हैं जो उनको खुद भी नहीं मालूम कि कैसे मदद करनी है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कनाडा के ब्रैम्पटन पब्लिक स्कूल की एक उस्ताद ताहिरा सैफ, इनका नाम है, और क्लास फोर को ये इस वक्त पढ़ा रही हैं ऑनलाइन। पूछते हैं इनसे कि कैसी जा रही है इनकी कोशिश। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा सैफ साहिबा।
वालेकुम अस्सलाम यास्मीन, कैसी हैं आप?
मैं ठीक हूँ, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तो कुछ बताइए कि कैसा लग रहा है, क्या इससे पहले भी जब आप लोग कोविड-19 से पहले भी आपके स्कूल में कोई ऐसा सिस्टम था कि तालिब इल्मों से घरों से इंटरेक्ट किया जाए तालीम के हवाले से?
जी हाँ, पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे इस काबिल समझा। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ कनाडा में गूगल क्लासरूम यूज करते हैं जो हम काफी सालों से यूज कर रहे हैं। उसमें ये है कि आपका इंटरेक्शन पेरेंट्स से भी होता है और बच्चों से भी। हमारे सब होमवर्क, क्योंकि जो होमवर्क में मोस्टली क्लास में जो चीज टाइम बच्चे देते हैं और जो चीज रीड करनी है वो हम घर भेज देते हैं कि बच्चे उसको घर पे दोबारा रीड कर सकें। तो उसके लिए हम गूगल क्लासरूम यूज करते हैं। उसमें हम हर साइंस, मैथ, इंग्लिश सब वर्क डिफरेंट असाइनमेंट उनको अंडर गूगल क्लासरूम हम उनको भेज देते हैं तो वो घर पे उनको रिव्यू कर सकते। ये हम लोग सितंबर से जब क्लासेस शुरू होती हैं तो साथ ही गूगल क्लासरूम में बच्चे ऐड हो जाते हैं, पेरेंट्स भी ऐड हो जाते हैं, और ये साथ के साथ चलता है हमेशा से, और ये पिछले 4-5 साल से चल रहा है।
अच्छा ठीक, तो ये तो आपको बड़ी सहूलत पहले से दस्तयाब थी कि आप कनेक्टेड थे बच्चों के साथ घरों में और होमवर्क तो आप पहले भी दे रहे थे, लेकिन अब क्या तब्दीली आई कोविड-19 के बाद? क्या सभी के पास इंटरनेट की सहूलत थी, क्या सभी के पास डिवाइसेस थी, और अगर नहीं थी तो फिर आपने क्या उनका सलूशन क्या निकाला?
कहने को हम बहुत अच्छे मुल्क में रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जब हमने ये इंटरनेट पे पढ़ाना शुरू किया तो 3 वीक तक हमें पता चला बहुत से बच्चों के पास डिवाइसेस नहीं है, बहुत से बच्चों के पास इंटरनेट ऐसा नहीं है जो 2 डिवाइसेस को सपोर्ट करे अगर उनके घर में 2 बच्चे हैं तो। फिर उसके लिए हमारे स्कूल बोर्ड ने सब बच्चों के हमसे नाम नंबर लिए और फिर स्कूल की जो डिवाइसेस थी उनके लिए एक्सेस बनाया गया कि वो घर पर भी काम कर सकें। और उसके बाद प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल ने जाकर बच्चों को घर में वो डिवाइसेस प्रोवाइड की क्योंकि कोविड-19 की वजह से इंटरेक्शन नहीं था। फिर प्रिंसिपल दरवाजे पे डिवाइस रखते थे डिवाइस और बच्चे या पेरेंट्स वेव कर लेते हैं और डिवाइस ले लेते थे। इसी तरह सबको इंटरनेट कनेक्शन भी घरों पे दिए गए और उसके बाद 3 हफ्ते के बाद हम लोग सही तरह से शुरू कर सके हो गया। अब नया जो हमने शुरू किया अभी गूगल मीट, तो अब बोर्ड ने गूगल मीट शुरू कर दिया है। तो गूगल मीट में यह है कि एवरी ट्यूसडे हम मीटिंग करते हैं, थोड़ा बहुत डिस्कशन उस पर कर लेते हैं, लेकिन टेस्ट इस वक्त अभी बहुत मुश्किल हो रहा है टेस्ट में। अगर हम टेस्ट भेजते हैं तो आपको पता है कि बच्चों के पेरेंट्स, उनके ब्रदर सिस्टर वो हेल्प कर सकते हैं उनको, इसलिए अभी तक टेस्ट का हमने कुछ नहीं शुरू किया। बहुत से क्वेश्चन है जो बच्चे हमें ईमेल करते हैं, फिर हम उनको वी आर गेटिंग यूज्ड टू, जैसे आस्ते आस्ते हमें आदत हो रही है तो अब हम बच्चों को ईमेल पे उनके क्वेश्चन का आंसर जब देते हैं तो साथ ही अगर उनको कोई ट्रबल होती है तो फिर हम उनको गूगल मीट पे इंडिविजुअली कॉल करके तो उनसे बात करके उनका प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश।
तो क्या ये सिर्फ टेलीफोन पर होता है या स्काइप पर होता है या कंप्यूटर पर होता है, किस तरह उनसे गूगल मीट में किस तरह उनसे बात होती है?
गूगल मीट बेसिकली प्रोटेक्टेड है कि जब तक टीचर ऑन नहीं करती बच्चे उस पे नहीं जा सकते, वो लिंक टीचर के कंट्रोल में है। तो उसमें ये है कि जब हम लिंक ऑन करते हैं तो जिस बच्चे से बात करना चाहते हैं तो उसी बच्चे का लिंक हम ऑन करेंगे, बाकी सबको क्लोज कर देते हैं। तो वो बच्चा जो है, जैसे आज मेरी गूगल मीटिंग सब बच्चों से हुई, तो सब बच्चे, गूगल मीट इज जस्ट लाइक, आई थिंक आई कैन से दैट जस्ट लाइक स्काइप, लेकिन इसमें यह है कि शेयर स्क्रीन है, सब बच्चों को हम देख सकते हैं, पूरी क्लास को, और पूरी क्लास के बच्चे डिस्कशन में हिस्सा ले सकते हैं।
ठीक, बच्चे क्या फील करते हैं कि टीचर जो है वो इतनी दूर है?
जैसे आज हमारी मीटिंग हुई तो बच्चे, बच्चों का मेन क्वेश्चन ये था कि हम वापस स्कूल कब जाएंगे।
बच्चे बोर हो गए।
बोर हो गए, दे मिस एवरीथिंग, दे आर फ्रस्ट्रेटेड। अब उनको लग रहा है, जैसे आज मुझसे बच्चे कह रहे थे कि हम दोबारा इसी ग्रेड में जाना चाहते हैं।
अच्छा।
क्योंकि हम अपने फ्रेंड्स के साथ हमने प्ले नहीं किया, अपने फ्रेंड्स के साथ हमने एंजॉय नहीं किया, तो और हमें वो जो बेसिकली जो क्लासरूम है ना, मुझे लगता है छोटे ग्रेड्स के लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत बच्चे इसको इतना लाइक नहीं कर रहे, पेरेंट्स भी और बच्चे भी।
तो खास तौर पर कुछ क्या मुश्किलात आपको क्या पेश आ रही हैं जब आप ये ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं? क्या कमी है और क्या नहीं होना चाहिए इन क्लासेस में, और क्या होना चाहिए?
जो मुझे सबसे ज्यादा लगता है वो ये कि कुछ बच्चे क्लास के दौरान इतना अच्छा काम नहीं कर रहे थे, लेकिन जब हम गूगल पे देखते हैं उनका काम आता है तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि घर में बच्चे, पेरेंट्स उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो इस वजह से काम का, वो मुझे लगता है जो काम बच्चे दिखा रहे हैं वो उनका काम नहीं है। तो टीचर्स के लिए बड़ा मुश्किल है कि बच्चों को इवेलुएट करना कि वो बच्चा ही कर रहा है या कोई और उसके लिए कर रहा है। और बहुत सारे बच्चे जो है वो कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं, वो कर ही नहीं रहे। तो ये भी मुश्किल हो रही है कि आप इंडिविजुअली उनसे बात नहीं कर पा रहे उनसे। तीन चार पेरेंट्स ऐसे हैं जब से हमने शुरू किया है उनसे हमारा कोई रब्ता ही नहीं है।
कनाडा में आप क्या समझती हैं कि स्कूलों में फिजिकल प्रेजेंस के लिए कोई जल्द कोई इम्कानात हैं?
तो नहीं, बस लगता है क्योंकि क्वेबेक में इन्होंने खोले हैं, तो क्या पता यहाँ भी बाकी सिटीज में भी आज तक खोल दें। लेकिन खोलने के बाद भी जो हम पेरेंट्स से बात कर रहे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता है कि माँ बाप इतनी जल्दी बच्चों को भेज देंगे। क्योंकि हमारी क्लास पोर्टेबल में है, पोर्टेबल में तो और मुश्किल है कि इतनी छोटी सी जगह पे डिस्टेंस रख के बच्चों को रखा।
तो ये मसाइल तो हैं, मसाइल हैं, और न सिर्फ ये कि इस वक्त हैं बल्कि आइंदा के लिए मजीद मसाइल भी आप समझती हैं कि सामने आएंगे, और जैसे जैसे सूरत हाल बदलेगी उसके मुताबिक ही उनके सॉल्यूशंस भी सामने आएंगे, तो उनसे निपटा जाएगा। तो बेहद शुक्रिया ताहिरा सैफ, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है।
अब हमने अपने प्रोग्राम में शामिल किया है और कर रहे हैं एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है बुनियादी तौर पर, लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी है। मैमूना सादी इनका नाम है और ये डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में जो इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंस है उससे वाबस्ता है। तो इनसे गुफ्तगु करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैमूना सादी साहिबा।
वालेकुम अस्सलाम,
बेहद शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मैमूना कुछ बताइए कि इस वक्त जो हमने जिक्र किया, क्या सूरत हाल है, मेंटली क्या लोग फील कर रहे हैं, खासतौर पर बच्चे और वालदैन और असातिज़ा, जबकि वो घरों में लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं?
देखें, सबकी जो है वो कंडीशन इस वक्त जो है सूरत हाल में कहूंगी कि तकरीबन एक ही जैसी है कि सब जो है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं और एग्रेसिव एग्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। बड़ों का ये है कि बड़े थोड़ा सा कह सुन के जो है वो उस चीज को निकाल लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत मसाइल हो रहे हैं, उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। उसमें जो ज्यादा है वो यही है कि एक तो क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और सब कुछ ऑनलाइन है, तो स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी जिसको इनिशियली जो है वो हम इतना ज्यादा मना करते हैं, इतना ज्यादा प्रमोट नहीं करते कि स्क्रीन टाइम होना चाहिए, लेकिन क्योंकि स्क्रीन टाइम इसमें बहुत ज्यादा हो रहा है, इस चीज को इस वक्त रोका भी नहीं जा सकता। इसके अलावा जो है वो फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन बच्चों में बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोई किसी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी मतलब उस तरह से नहीं है जिस तरह से लॉकडाउन से पहले होती थी, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं कि बाहर पार्क्स में बच्चे नहीं जा सकते, या बाहर बच्चों गली मोहल्ले में बच्चे नहीं खेल सकते, या कुछ भी जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज थी, फिजिकल एक्टिविटीज, वो बहुत जो है वो कम हो गई है, उनको बहुत ज्यादा मैनेज करना पड़ रहा है. तो जो पेरेंट्स हैं उनके लिए इस तरह से ये चीज डिफिकल्ट हो रही है कि उनको मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट है वो डिफिकल्ट हो रही है. और सबका जो एक अपना मी टाइम होता है वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है. जैसे अगर कोई माँ है, वो शुरू में ये होता था कि बच्चे को स्कूल भेज के वो थोड़ा सा अपना जो भी है अपनी चीजें कर ली, जैसे लाइक कुकिंग कर ली आराम से, या बर्तन धो लिए, या घर साफ कर लिया. अब ये है कि बच्चों की मौजूदगी में उनको ये भी तमाम काम करने हैं, तो ये उनके लिए भी काफी फ्रस्ट्रेशन का बायस बन रही है. ये तो मोर ऑर लेस यही फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन है जो बहुत ज्यादा रिपोर्ट भी हो रहा है. हमारे पास केसेस भी आते हैं कि बच्चा जो है वो बहुत एग्रेसिव हो रहा है, या बिहेवियर इश्यूज आ रहे हैं, बदतमीजी कर रहा है, बात नहीं मान रहा, या इस किस्म की चीजें जो है बहुत ज्यादा हो रही है.
तो क्या आप सोल्यूशन क्या देंगी वालिदैन को जो इस वक्त बच्चों के साथ मौजूद हैं और उन्हें पढ़ा भी रहे हैं, खासतौर पर उस वक्त के उन्हें खुद भी नहीं आता कि वो किस तरह ऑनलाइन पढ़ें या बच्चों को पढ़ाएं? ये एंगल भी आप बताइए कि वालिदैन को ये मुश्किल जो पेश आ रही है कि वो बच्चों को समझा भी नहीं पा रहे जिनको कंप्यूटर के बारे में ज्यादा इल्म नहीं है.
अच्छा, ये चीज जो है वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये चीज भी एक मतलब इशू क्रिएट हो रहा है कि जिन पेरेंट्स को इतना पता नहीं है कि वो कंप्यूटर को कैसे यूज करें, या वो ऑनलाइन किस तरह से एक्सेस लें, उनको भी जो है वो बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है या कराना पड़ रहा है. लेकिन उसमें ये है कि देखिये, हर इंसान जो है वो कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ सीख रहा होता है ना, हम सब सीखने के अमल में. तो इसको भी मैं पेरेंट्स से यही कहूंगी कि इसको भी एक सीखने के अमल के तौर पर लें और इसको जो है वो सीख लें. और इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है. शुरू के 3-4 दफा आपको डिफिकल्टी होती है कि आप कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करें, या आप जो जिस तरह के डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, जैसे जूम है, या बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू जो है वो हमें क्लास अरेंज करनी पड़ती है बच्चे की, या बच्चे को सुबह उठा के बिठाना पड़ता है लैपटॉप ऑन करके, या जैसे भी. तो उसको जो है वो सीखना जो है वो सबसे बड़ा एक पॉइंट है. अगर उसको सीख लिया जाए तो वो इतना बड़ा मुश्किल मरहला नहीं है. लेकिन जो है वो पेरेंट्स जो है वो बिल्कुल अवॉइड करें कि हमने जब पूरी जिंदगी नहीं किया अब हम क्यों करें, तो वो थोड़ा सा इस चीज पे जो है वो मैं सबको यही एडवाइस करूंगी कि थोड़ा सा इस चीज को सीखने की तरफ जाएं. क्योंकि अब जो है जनरली भी दुनिया जो है वो ऑनलाइन या सॉफ्टवेयर की तरफ ज्यादा जा रही है, रेदर कि वो फिजिकली जो है वो क्लासों में जाके पढ़ाया जाता था. अगर हम बाहर के ममालिक में देखें तो वहां तो ये चीज ज्यादा पहले से हो रही है. तो इस चीज को जो है वो अगर वो सीख लेंगे तो चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी.
इसके अलावा क्या वो इंगेज किस तरह करें बच्चों को? हर उम्र का बच्चा घर में मौजूद है तो सबके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज वो कैसे अरेंज करें, घर का काम भी करें, खासतौर पर माएं?
देखिए, ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग पॉइंट है और चैलेंजिंग टाइम है. मैं यही कहूंगी सबके लिए, पेरेंट्स के लिए तो ज्यादा है क्योंकि उनको सब कुछ मैनेज करना है, स्पेशली मदर्स के लिए. वो जो है मदर्स जो कि घर में हैं या घर से बाहर काम करिए, अपने काम भी मैनेज करें और बच्चों को भी इस तरह से लेके चलें, तो उसमें यही है कि सबसे पहले तो अपनी जो मेंटल हेल्थ है, या अपनी जो एक जिसे कहते हैं ना, अपने आप को थोड़ा सा उस चीज पे लेके चलें कि ज्यादा गुस्सा ना करें या ज्यादा एग्रेसिव ना हो. इस चीज को सोच के कि बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं हो रहा, अगर वो यही सोचना शुरू हो जाएंगे तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. तो देखें, हर एज ग्रुप के बच्चे के लिए अलग अलग एक्टिविटी प्लान करना तो थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. तो यूजुअली हम ये अपने क्लाइंट्स को या अपने पेशेंट्स जो हमारे पास पेरेंट्स वहां पे भी आते हैं, हम उनको भी यही बताते हैं कि वो जो है वो म्यूचुअल एक्टिविटीज कुछ प्लान करें. जैसे कि ड्राइंग का कोई छोटा सा कुछ प्लान कर लिया, छोटा सा इवेंट जिसमें तमाम बच्चे, जिस तरह छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक, सबको बिजी रख सकते हैं. कलरिंग ऑलमोस्ट सब बच्चों को पसंद होती है, तो इस किस्म की एक्टिविटीज प्लान कर ली. फिर उसके अलावा बच्चों को अपने साथ चीजों में इन्वॉल्व करें. जैसे अगर बच्चे जो है वो इस काबिल हैं कि वो आपकी हेल्प कर सके तो आप उनको अपने साथ इन्वॉल्व करें. जैसे एक बच्चे को टास्क दे दिया कि आप अपना रूम साफ कर लें, इसकी डस्टिंग कर लें, एक को ये टास्क दे दिया कि वो बर्तन उठा के जो है वो किचन में रख दे, या इस किस्म की चीजें. आप जितना बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे उतना आप आसानी होगी।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ममुना सादी, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और आप हैं
शुक्रिया आपका।
चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, बुनियादी तौर पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और आप डाओ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची से वाबस्ता हैं, उसके इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल
शुक्रिया।
साइंसेज में आप साइकोलॉजिस्ट हैं। आपका बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आज का ये प्रोग्राम खत्म होता है। यास्मीन जमील को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे।